जब भाई फिलिप ने आरंभ कर लिया आराधना तो उन्होंने इस बात को कहा, स्मरण दिलाया कि ये वर्ष का आखिरी रविवार है 2015 वर्ष का, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम साथ मिलकर आज इस भवन में इकट्ठा हुए हैं कि हम इस आराधना में सहभागी हो सकें। और जब हम इस पूरे साल को देखते हैं कि जब 2015 में आरंभ किया था, ये वर्ष एक बंद पुस्तक के समान था। यह आपको पुस्तक आपके हाथों में दी, आपने केवल इसका कवर देखा, लेकिन जब आप पहला पेज खोलेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसमें क्या है, और जैसे जैसे पन्ने पलटते रहेंगे आपको इसमें सारी लिखनी और सारा मिलता चला जाएगा। ठीक इसी रीति से जब 2015 आपने शुरू किया था, मैंने और आपने, वो वर्ष एक बंद पुस्तक के समान था, और आप इतना जानते थे कि हमने 2015 में प्रवेश किया है, परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर के हाथों में इस वर्ष को दिया, और अब जो अभी 3-4 दिन बाकी हैं इस पुस्तक के, 2015 वर्ष की पुस्तक के पन्ने शेष बाकी हैं खत्म होने में, यहां तक मुझे और आपको परमेश्वर ने पहुंचाया है। और इन पिछले इन वर्ष इस वर्ष के दिनों में, हफ्तों में, महीनों में परमेश्वर मेरे और आपके साथ बन कर रहा है। तो क्यों ना आज हम इस बात को ध्यान रखते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने मेरी और आपकी यात्रा में सहायता की है। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितना अधिक विचार किया, ये जब यहां पर बैठे हुए हैं तो आप इस पिछले वर्ष को किस प्रकार से आप स्मरण कर रहे हैं। जब आपने 2015 पहली जनवरी को प्रवेश किया किस रीति से, आप नहीं जानते थे कैसे वर्ष व्यतीत होगा, लेकिन धीरे 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 करके परमेश्वर ने आपकी सहायता की, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपका ध्यान भजन संहिता 103 पर ले आना चाहूंगा जो हमने अभी पढ़ा, और इस पर थोड़ी देर ठहर करके हम दाऊद के उस हृदय को देखना चाहेंगे जो किस प्रकार से वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। भजन संहिता 103, और इस पर थोड़ी देर के लिए हम विचार करना चाहेंगे। जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है तो उससे पहले 102 भजन है, और 102 भजन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि दाऊद व्यथित है, दाऊद व्याकुल है, हताश है, परेशान है, निराश है, व्यथित है, और अपने जीवन में कुछ थका हुआ सा लग रहा है। और तब वो भजन संहिता 102 में वो प्रार्थना करता है, भजन संहिता 102 उसकी प्रार्थना है, और प्रार्थना के बाद उसको परमेश्वर उसके ऊपर उपकार करता है, और तब भजन संहिता 103 में आकर वो आरंभ करता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। तो जब आज हम इस भजन पर विचार करना चाहते हैं तो हम इस भजन संहिता के 22 पद में 4 मुख्य बातों को हम देख सकते हैं या देखना चाहेंगे। ये भजन एक परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का भजन है, परमेश्वर के प्रति आभार को, धन्यवाद को व्यक्त करने का भजन है, और वो भजन संहिता 103 में पहला दूसरा पाप पद जो है वो परमेश्वर को धन्य कहना है। 30-5 पद में क्यों परमेश्वर को धन्य कहना है, क्या उसने हमारे किया है जो हम उसको धन्य कहें। 6-18 पद में हम उस बात को देखते हैं परमेश्वर का स्वभाव, जिस स्वभाव में होकर उसने मेरे और आपके साथ व्यवहार किया है पूरे वर्ष व्यवहार किया है, और तब उसके बाद 19-22 पद में हम देखते हैं उसका अनंत अधिकार, जिसके अधिकार में होकर न केवल उसने हमारे साथ सृष्टि की लेकिन उस अधिकार में होकर उसने हमें तरह से व्यवहार करा है, और अब वो चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। सो दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करता है। दाऊद के जीवन में इस बात को देखते हैं बार बार कि उसका जीवन परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला जीवन था, वो परमेश्वर को हमेशा धन्य कहता था, और यहां पर वो कह रहा है पहले दूसरे पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, चाहे मेरा जीवन है, चाहे मेरी शक्ति है, चाहे मेरी भावना है, चाहे मेरी इच्छा है, चाहे मेरा हृदय है, संपूर्ण के साथ मैं परमेश्वर को धन्य कहूं। हे मेरे मन तू उसको धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसी उपकार को जो उपकार उससे पहले जनवरी से लेकर आज तक के दिन में किए, या मैं कहना चाहता हूं इस वर्ष को ध्यान रखते हुए जो कुछ, यद्यपि हम अपने वर्षों को गिन सकते हैं, यद्यपि हम अपने आयु को गिन सकते हैं, लेकिन आज जबकि हम इस वर्ष की समाप्ति में है तो ये बहुत अच्छा है कि हम इन दिनों में बैठकर परमेश्वर के उपकारों को विचार कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू खा पी कर तृप्त हो जाए तो उसका धन्यवाद करना ना भूलना। कई बार हम परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त तो करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते या धन्यवादित नहीं होते। पर छोटी छोटी बातों में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत कार्य करता है। और तब पहले दूसरे पद में दाऊ कह रहा है हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को धन्य कहना है। तब उसके बाद तीन पद से लेकर पांच पद तक क्यों धन्यवाद करना है, क्यों उसको धन्य कहना है, उसने क्या किया है हमारे लिए। और तब यहां पर करीब छह बातें हैं जिनके लोग कहता है मुझे इसलिए परमेश्वर का धन्य कहना है। और मैं और आप जब आज इस वर्ष के पड़ाव में हैं तो ये अच्छा होगा कि हम बेहतर विचार करें, शायद अकेले में, शायद जाने के बाद यहां पर परिवार में साथ मिल सके और अपने मन को अपने सोच को परमेश्वर के कार्य के प्रति उठाए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। और तब वो कहता है जो तो कहता है तीस के पद से लेकर पांच पद तक मैंने कहा छह बातें हैं जिसके लिए वो कह रहा है हमें धन्य कहना है। पहली बात वो कह रहा है जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। जीवन की सबसे बड़ी आशीष, जीवन की सबसे बड़ी आशीष अधर्म को क्षमा की क्षमा प्राप्ति है। जीवन की आशीष केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ये जरूर हमारी आवश्यकता में है पर सबसे बड़ी आशीष नहीं है। भजन संहिता 32 में दाऊद कहता है क्या इस धर्म धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए। वो व्यक्ति धन्य नहीं है जिसके पास बहुत बड़ा बंगला है, वो व्यक्ति धन्य नहीं है जिसके पास बहुत लंबी खेती है, वो व्यक्ति धन्य नहीं है जिसका बहुत मान और सम्मान है और बहुत प्रसिद्ध है, वो व्यक्ति धन्य नहीं है। क्योंकि दाऊद राजा के पास सब कुछ था, उसके पास सैनिक के महल था, नौकर चाकर थे, सब कुछ उसके पास अच्छा था, लेकिन वो कहता अपने जीवन में कि क्या ही धन्य व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए। और मेरे प्रियो सबसे पहली आशीष और सबसे बड़ी आशीष हमने अभी पिछले दिनों में बड़े दिन को स्मरण किया और ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर इसी आशीष को देने के लिए आए। अदन की वाटिका में वो आशीष जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया था, उस अदन की वाटिका में मनुष्य पाप में गिरने के कारण उस आशीष से वंचित हो गया, वो आशीष उसके जीवन में खो गई और उसके कारण तो खोने के कारण मनुष्य के जीवन पाप आ गया। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर है उसने अपनी सनातन योजना में होकर उस महान आशीष को, और मैं बार बार कहता हूं उद्धार की आशीष, उद्धार की आशीष परमेश्वर उद्धार परमेश्वर के साथ मिलन है, मेल जो मेल हो जाना है। जब हम उद्धार के बारे में बात करते हैं उद्धार क्या है तो कई सारे लोग उसके बारे में बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था और जाते हुए कुछ लोग मिले, भैया तुम आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत कुछ। हाँ भैया क्या बताऊं, मेरे पास बहुत बड़ा दिग्गजा था और मेरी फलाने सहायता दीदी मेरा तो बहुत बड़ा उद्धार हो गया। अब तो सुना बताओ या तो दूसरा मिला, क्या भैया तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, अरे मेरी लड़की की शादी हो गई, मेरा बहुत बड़ा उद्धार हो गया। ये उद्धार नहीं है, ये छोटा सा बोझ हल्का होना है। लेकिन मनुष्य के वाचा बातों में हम इन शब्दों को सुनते हैं, लेकिन उद्धार वास्ते से परमेश्वर के साथ मिलन हो जाना है, परमेश्वर के साथ मिल जाना है। और मेरे प्रियो और ये दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया था। दाऊद अपने जीवन में क्या कह रहा है, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। क्या हम भजन संहिता 103 को पढ़ते हैं, न कि भजन संहिता में यशाया में, अभी हम देखेंगे, 3 शब्द आते हैं पहला शब्द है अधर्म पाप पाप अधर्म पाप अपराध। अगर हम 10 पद को पढ़ें तो 10 पद में यहां कर्म क्रम से लिखा हुआ है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया पहली बात, ना हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया दूसरी बात। तो कहता है जैसे आकाश से पृथ्वी या 12 पद में उदा जल से अंदा जल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। पाप अधर्म अपराध ये 3 शब्दों को इंग्लिश में भी इन तीनों के अलग अलग शब्द उपयोग हुए हैं। दाऊद अपने जीवन में बार बार इस्तेमाल करता है। अगर मेरे साथ आप थोड़ा सा निकालें वचन संहिता 32 में आएगी, 1-2 इस शब्द को देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है वचन संहिता 32 क्या ही धन्य हो जिसका अपराध क्षमा किया जिसका पाप ढांपा गया हो, क्या ही धन्य मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। दाऊद यहां पर भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब अपने जीवन में उसने तीनों बातों को देखा था। वचन संहिता 11 पहला पद, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर,
दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म को मुझे मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर। 3 शब्दों का बार बार इस्तेमाल करता। पाप परमेश्वर से अलग हो जाना है। अधर्म की वाटिका में परमेश्वर पर अविश्वास किया, परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार ना किया, परमेश्वर की समानता में हो जाने की उस स्वार्थी इच्छा को आदम हवा ने प्रकट किया, उसके कारण परमेश्वर से अलग हो गए। पाप परमेश्वर से अलग करता है, लेकिन पाप क्षमा के बाद भी हम इस संसार में कई बार अधर्म और अपराध में जीवन व्यतीत करते हैं। अधर्म अधर्म हट धर्मी है, हट धर्मी हट्टीपन का जीवन व्यतीत करना। होता है मेरे प्रियो आपने प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा को प्राप्त किया हो, लेकिन हट धर्मी का हट्टीपन का अधर्म आपके जीवन में आज तक बना है। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर की ताड़ना को प्राप्त करने बाद, निर्दोषों को प्राप्त करने बाद, सब कुछ को प्राप्त करने बाद फिर भी किसी न किसी स्वभाव में, किसी न किसी व्यवहार में, किसी न किसी आदत में आप में हट धर्मी पाई जाती है। और हट धर्मी होने के कारण हमारे हृदय में हमारे जीवन टूटापन नहीं है। लेकिन हम दाऊद के जीवन में इन बातों को देखते हैं जिसको आगे बढ़कर देखना चाहेंगे। तीसरी बात अपराध, अपराध नियमों की अवहेलना करना है, जानबूझकर नियमों की अवहेलना करना है। उदाहरण के लिए हमारे को मालूम है कि हमारे सरकार ने या हमारे देश में नियम है कि हमें बाएं हाथ पर चलना है, लेकिन मैं तो कहूं नहीं, मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूं और इसलिए मैं बीच सड़क में चलूंगा। मैं जानबूझ करके एक स्वतंत्र देश के नागरिक का बहाना लेकर के और मैं जानबूझ करके उस नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं। मसीह जीवन में कई बार हम मसीह में आने के बाद भी अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करते हैं कि हम अधर्म और अपराध में बने रहते हैं। और हमें सोचना है, इस बात पर विचार करना है। मेरे प्रियो ये सच है, एक विश्वासी का जीवन निरंतर अपने जीवन को जांचने वाला होना है। हम मनुष्य हैं, पुराना स्वभाव नए स्वभाव के साथ संघर्ष करता है। दाऊद क्यों इन सारी बातों को लिख रहा है? दाऊद परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, परमेश्वर के योग चलना चाहता, लेकिन उसके जीवन में भी ये सारी चीजें आई। और तब यहां पर वो कहता है परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। उसने भजन संहिता 32 में आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 में आप पढ़ेंगे, वो अपनी दशा को बहुत विस्तार के साथ वर्णन करता है कि ये अधर्म क्या करता है, ये पाप क्या करता है, ये अपराध क्या करता है। वो कहता है मैं बेचैन हो गया, मेरी हड्डियां मानो पिघल गई, मैं रात भर जागृत रहा, मैं सो ना सका। ये दुर्दशा उसकी हो गई जब तक मैंने अपने अधर्म को, जब तक मैंने अपराध को, जब तक मैंने अपने पाप को परमेश्वर से मान नहीं लिया। मेरे प्रियो यदि आपने आज तक अपने जीवन में पापों से पश्चाताप नहीं किया है, अपने जीवन में नहीं कहा प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। कब, अभी परसों हम किसी से बातचीत कर रहे थे और बात करते हुए एक भाई यहां पर थे, मिश्रा जी बात करते हैं, और हम उनको से बात करने प्रयास करते और वो इस बात को स्वीकार करते आने थे कि मनुष्य पापिया, सबने पाप किया है। मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि वो अपनी खोपड़ी के अनुसार बात करता है, अपनी खोपड़ी के अनुसार बात करता है। और ये लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप, परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर दया करता है, लेकिन परमेश्वर आगे अपने बारे में कुछ और भी कहता है जिसको अभी मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन मैं पहली बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्या आपने अपने जीवन में अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार किया है? अगर नहीं तो पहला कदम आपके जीवन में होना है। आपने बहुत सारी आशा को देख रहे हैं, बहुत सारी भलाई को देख रहे हैं, प्रभु तूने ये क्या कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आशीष अगर आपके जीवन में ये अनुभव नहीं है, आपके जीवन में ये निश्चयता नहीं है, आपके जीवन में ये विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके अधर्म, आपके पाप क्षमा किए गए, सारी आशीष बेकार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मेरे प्रियो, इसलिए सबसे बड़ी आशीष जो यहां पर सूची में रखता है, एक बार नहीं कई जगह दाऊद इस बात को कहता है, तब कहता है तेरे सब अधर्मों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो हमारे बलिदान हुए इस तीनों चीजों के लिए, और इसीलिए जब यशाया आप पढ़ेंगे, यशाया उसका 53 अध्याय जो पुराने नियम का सुसमाचार पहुंचता है, उसमें यशाया 53 अध्याय में इन तीनों बातों के लिए कहता है। यशाया 53 अध्याय 5 पद और 12 पद में अपराध अधर्म, और 4 पद में पाप अधर्म और सॉरी अपराध, 5 पद और 12 पद में वो हमारे अपराध के लिए भेजा गया, वो हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया, वो हम उसने हमारे पाप को उठा लिया। ये यशाया में 53 में तीनों चीज का वर्णन करते हुए वो यशाया इस बात की भविष्यवाणी करता है। तब आगे जब हम कहते हैं ना के लिए दूसरी आशीष, तब वो और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तब दूसरी आशीष, क्यों मुझे परमेश्वर को धन्य कहना है? परमेश्वर तूने मेरे अपराध को क्षमा किया है। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने इस 2015 में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया होगा, खुद से पहले किया, लेकिन आपको बार बार मुझे और आपको याद करना है कि उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। दूसरी बात, वो सब रोगों को चंगा करता है। रोग की जब हमारे सामने बात आती है तो केवल हम बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये बात करते हैं और भीड़ लगी रहती है। अगर आज हम हीलिंग मीटिंग करें और कह दें, यहां कह दें कि चंगाई की सभा होगी। अभी पिछले दिन में हमारे भाई लोग यहां ट्रैक बांटने गए, तो किसी ने उनसे पूछा कि अगर वहां पर आएंगे हम तो क्या हमें चंगाई मिल जाएगी। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य की सोच में केवल चंगाई शरीर 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 है। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन चंगाई के बारे में बात करता है तो दाऊद केवल शरीर की चंगाई के बारे में बात नहीं कर रहा। यद्यपि परमेश्वर हमारे शरीर से, हमारे देह से प्रेम करता है, वो हमारे देह की चिंता करता है, वो हमारे देह की भलाई करना चाहता है, देह में भी चंगाई देता है, लेकिन हमारे अंदर मानसिक बीमारी भी हो सकती है। मस्तिष्क बार बार प्रभु को जानने के बाद भी फिर भी हमारा मस्तिष्क बुराई की ओर भागता है, गंदगी की ओर भागता है, अनुचित बातों की ओर भागता है, अनुचित सोच में जाता है। हमारा हृदय कड़वाहट, जलन, घा, क्षमा न करना, ये रोग है जो हृदय में रोग लगा हुआ है, जिसके लिए बाइबल बताती है। समय नहीं उन रिफरेंस को मैं आपके सामने लाऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है, उसके मन को कौन समझ सकता है। यर्मिया उसका 17:9 में ये दशा है, उस रोग से छुटकारा पाना है। प्रभु को पाने के बाद भी हमारे जीवन में मुझे और आपको देखना है, क्या इस वर्ष में जो बीत रहा है मुझे संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन के लिए, मुझे प्रभु के सामने बार बार आना पड़ा अपने हृदय के लिए, मेरे को प्रार्थना करनी पड़ी बार बार अपने प्रभु के पास आकर अपने लिए, मुझे मालूम था मेरे जीवन में मेरे हृदय में किस प्रकार का रोग है। केवल मैं बात फिर से कहना चाह रहा हूं, केवल वो रोग नहीं जो शरीर की केवल बुखार और बीमारी से सीमित है, लेकिन परमेश्वर मेरे उन रोगों को चंगा करता है। दाऊद अपने जीवन में जानता था जब उसने पाप किया, बैतशबा के पाप में किया, तो उसने अपने पाप को छुपाने के लिए एक पाप के साथ दूसरा पाप किया, दूसरे पाप के साथ तीसरा पाप किया। जब वो राजा बन गया, अधिकार में आ गया, तो उसके अंदर घमंड उत्पन्न हो गया। ओ परमेश्वर ने कहा था कि मैं इतनी संख्या बढ़ाऊंगा, फिर भी उसने अपनी जनगणना कराई। घमंड का ये रोग की ये हृदय की दशा है और परमेश्वर उसके रोगों को चंग करता है। क्या प्रभु ने इस वर्ष में आपको यह अनुभव दिया है कि प्रभु ने आप कहते प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं फलाने भाई को क्षमा नहीं कर सकता था, लेकिन तूने मेरे इस हृदय के रोग को चंगा किया है, अब मैं उसको क्षमा करता हूं, उसको गले लगाता हूं, उससे बात करता हूं, उससे मिल सकता हूं। क्या यह आप ही है, आपने क्या है? कहता है उसने रोगों को चंगा किया। दूसरी आशीष तब कहता है तेरे प्राण को गड्ढे में से होने में उभारता है, गड्ढे में भजन सकता। तीस में कहता है तूने मुझे खींच कर निकाला है। मैं अक्सर अपने जीवन का उदाहरण देता हूं, मैं गांव में रहता था और गांव में पढ़ता था देहरादून में, जब मैं 5 क्लास में था और मुझे बहुत दूर हमें पैदल गांव में जाना पड़ता था स्कूल में। और एक दिन मैं चला जा रहा था, बारिश हुई थी, जमीन समतल थी थोड़ा सा, मैंने सोचा कि ठीक जमीन है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, और मैंने पैर डाला, मेरा पैर उस दलदल में नीचे दलदल था, दलदल में धस गया। अब जब दलदल में धसा मैं निकलने की कोशिश कर रहा था अपने पैर से, जैसे मैं इस पैर से दूसरे पैर को दबा के निकालने की कोशिश करा, मेरा दूसरा पैर भी उस दलदल में धस लगा। मैं अपना प्रयास करता रहा काफी देर, अब मैं इस वचन को समझ सकता हूँ, प्रभु धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जो उन दिनों में दिए, आज मैं वचन की सच्चाई को और अधिक व्यवहारिक रूप से समझता हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कभी इस पैर से कभी, लेकिन मैं उस दलदल में कीचड़ में धस रहा था। तब एक बुजुर्ग उधर जा रहे थे, मैंने आवाज दी, मैंने बाबा मेहरबानी से मेरी मदद करिए। उस बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और तब हाथ पकड़ के उसने खींचा। ओह मेरे प्रियो, दाऊद इस अनुभव को जानता था। दाऊद अपने जीवन में पाप के दलदल में गिरता चला रहा था, अपराध के दलदल में गिरता चला था, अधर्म के दलदल में गिरता चला था। वो सच में सब कुछ पाने के बाद भी उसकी ऐसी दुर्दशा थी, और तब परमेश्वर ने उस अनुभव में उसको ले गया और तूने मुझे खींच कर निकाला है, तूने मुझे खींच कर निकाला। इसलिए कहता है हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कहे। मेरे प्रियो मैं नहीं जानता, आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं कौन से दलदल थे, शायद कोई चिंताओं के दलदल थे, शायद कोई और परेशानियों के थे और विपत्तियों के थे, बीमारियों के थे, दुख के थे, आस पड़ोस में संघर्षों के थे, जहां आप अपनी साक्षी रखना चाह रहे हैं स्कूल में कॉलेज में किस स्थान में, लेकिन परमेश्वर आपका सहायक हुआ और आपने आपको निकाल लिया। वो कहता है कि उसने मेरे जो मेरे प्राण को गड्ढे में से उबारता उठाता है। आपको ऐसा लग रहा था कि आप हताश होते चले आ रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं किसी पारिवारिक दुख के कारण, किसी समस्या के कारण, लेकिन परमेश्वर सहायक बन गया और उसने आपको पक्का हाथ से पकड़ लिया और खड़ा कर दिया। और इससे वो कहता है हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। और मेरे प्रियो ये सच है, हमें हर पल में परमेश्वर पर मनन करना है, विचार करना है। दाऊद को कहा जाता है कि वो जुगाली करने वाला व्यक्ति था, जुगाली करने वाले जानवर को आप जानते हैं, और वो जानवर जब बैठ जाते हैं दिन भर चारा देते हैं, खासतौर से आप देखिए गांव के लोग गाय या भैंस को, तो बैठ जाती है और बैठने के बाद अपना जबड़ा यूं करके चलाती है, अपना जबड़ा यूं करके चलाती है, और चलाने के बाद तब उसके पेट में जो घास या चारा था निकलता है और चलता है, तब उसके झाग निकलते आते हैं और आप उसके मुंह में देखेंगे जो भूसा जो खाया वो भी दिखाई देता है। जुगाली करना है, और दाऊद को इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि वो जुगाली करने वाले परमेश्वर के वचन को इसलिए कहता है रात दिन मैं तेरी व्यवस्था का मनन करता हूं। मेरे प्रियो एक विश्वासी का जीवन, आज ये मोबाइल से प्रेम लोगों का परमेश्वर के वचन से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सच दुख की बात है, जवान लोग जवान बच्चे बहुत दुख की बात है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन को सही रीति संभाल सकता है। मेरे प्रियो, जब आपके सामने दुख आए, परेशानी आए, परीक्षाएं आए, मन आपका व्याकुल हो, चिंता आपके सामने आए, आपका हृदय कड़वाहट से, जलन से भर जाए, दुख से भर जाए, विरोध से भर जाए, घुटने के बल हो जाइए, भजन संहिता खोलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर मुझसे आप बात कीजिए, मेरे बीमारी को दूर कीजिए, मुझे इस गड्ढे में से निकाल लीजिए, ओ प्रभु थोड़ी देर बाद आपकी सहायता करेगा। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर के वचन का जीवन है, परमेश्वर का वचन जीवित है, मेरे और आपसे बात करने वाला है। और मेरे प्रियो, इसीलिए हम इस वचन पर खड़े हो सकते हैं। आकाश तो पृथ्वी तो टल सकता है, लेकिन प्रभु का वचन बिना एक मात्र बूंदे पूरे में नहीं टलने पाएगा। तब वो आगे चल के कहता है, ना के लिए तूने उसमें उतारा है, तेरे तूने मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाया है, जो तेरे प्राण को गड्ढे में सुभारता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। मुकुट किस चीज का प्रतीक है? मुकुट महिमा का प्रतीक है, मुकुट सम्मान का प्रतीक है, मुकुट अशोभा का प्रतीक है। हम दयनीय में बहुत सारे मुकुटों का वर्णन पाते हैं, और वो दाऊद इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, कभी आपने विचार किया दाऊद को क्यों कहा गया परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति? इसलिए कहा गया, दाऊद के जीवन में जब पाप आया, अपराध आए, वो बालकों के समान, बच्चों के समान परमेश्वर के पास रोया, पश्चाताप किया, और उसने दोबारा उस चीज को नहीं दोहराया कोई भी बदल। और इसीलिए वो अपने बेटे सुलेमान को सिखा सका, जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है, मान नहीं काफी नहीं, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। यही दाऊद का जीवन था, और इसलिए उस अनुभव कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो अपने दिनों को याद कर सकता था, चाहे वो उसकी संघर्ष के दिन थे, चाहे उसके सामने उसको विरोध का सामना करना पड़ा था, चाहे उसको राज में से अपने राज शासन को छोड़कर भागना पड़ा था, चाहे उसको गुफाओं में रहना पड़ा था, चाहे कुछ भी था, कैसी परिस्थिति, यहां तक कि जब उसने पाप पे भी संघर्ष किया, सब कुछ के बाद परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर उठाया। परमेश्वर ने उसको उठाया, उसको कह रहा है, पहली आशीष अधर्मों को क्षमा करना, दूसरी आशीष रोगों को चंगा करना, तीसरी आशीष गड्ढों में से उबारना, और चौथी आशीष मुकुट से शोभायमान करना, और तब पांचवी आशीष कहता है, जो तेरी लालसाओं को भली वस्तु से तृप्त करता है। परमेश्वर सब लालसाओं को तृप्त नहीं करता, परमेश्वर सब लालसाओं को पूरी नहीं करता। फिर से मैं बोला हूं, परमेश्वर सब लालसाओं का, हमारी बहुत सारी लालसाएं, परमेश्वर सब कुछ नहीं करता जो परमेश्वर की दृष्टि में भली है, जो परमेश्वर की दृष्टि में भली है। मैं अपने जीवन को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। मैं तो छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के साथ व्यवहार करता हूं। एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ बैठी हुई है, वो शायद चाकू से अपनी सब्जी काट रही है, बच्चा रोता है, जिद करता है, मुझे ये चाकू चाहिए, मुझे चाकू चाहिए। माँ कहती नहीं, क्योंकि ये चाकू उसके लिए भला नहीं है, वो तो खेलना चाहता है, वो तो कुछ और चाहता है, लेकिन बच्चा अनभिज्ञ है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर उस मां के प्रेम से बढ़कर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए वो सब कुछ नहीं देना मांगता जो उसकी दृष्टि में भली है। और कहीं भी आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, भजन संहिता 104:28 में भी है, और भी आगे कई जगह में बार बार भला भला, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। भजन संहिता 25:12 में परमेश्वर भला है और खरा परमेश्वर है, और इसलिए वो भली वस्तु से हमें आशीषित करता है। और वो यहां पर कहता है, जो तेरी लालसाओं को संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। संसार संतुष्ट नहीं कर सकता, धन संपत्ति संतुष्ट नहीं कर सकती, हमारा पद मान सम्मान हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, संसार की और चीजें संतुष्ट नहीं करती, परमेश्वर संतुष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, वो ये कहता है, पांचवी आशीष जो तेरी लालसाओं को भली बनी, तब उसके बाद छठी आशीष जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। उकाब, बाइबल में उकाब पक्षी का बहुत जगह वर्णन है, और उकाब की विशेषता है, उकाब की विशेषता है, उकाब गिद्ध से छोटा होता है, गिद्ध बड़ा होता है। इसीलिए मती में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो गिद्ध के बारे में कहते हैं, जब वो लाशों को देखते हैं तो गिद्ध इकट्ठा हो जाते हैं, वहां द्वितीय आगमन के बारे में संबंध करते हैं। लेकिन उकाब के बारे में यशा वर्णन करता है भजन संहिता वर्णन में, यहां तक कि अच्छा व्यवस्था विवरण जेटोनमी 32 अध्याय, जेटोनमी व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और 11 पद, यहां पर एक उकाब की बहुत विशेष खूबी दी गई है। कई सारी जगह है लेकिन उकाब के समान जो अपने घोंसले को हिलाता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसने अपने पंख फैलाए और उन्हें संभाल लिया और उन्हें अपने पैरों पर बैठा लिया। हम वो गीत गाते हैं परम पिता की हम स्तुति गाएं, और उसमें इस पद का वर्णन है, इस पद का वर्णन है ना, परम पिता की स्तुति गाए उसकी पे। उकाब की विशेषता क्या है? जब उकाब के बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं, वो अपने आप उसके घोंसले को तोड़ देता है अपने आप, और उसका घोंसला बहुत ऊंचा होता है, और जैसे ही वो घोंसले को तोड़ देता है वो बच्चे नीचे गिरने लगते हैं, वो गिरने देता है बच्चे नीचे गिरते चले जाते हैं। लेकिन वो देखता है कि बहुत नीचे आ गए, एकदम से उकाब आता अपने पंखों तक फैलाता है और उनको उस पर रोक लेता है, फिर वो ले आता है, फिर वो चाय पे ले आता है, फिर वो चाय पे ले जाकर उनको छोड़ देता है, फिर वो गिर गिरने लगते हैं, फिर वो अपने पंखों को बुलाते हैं, वो बार बार ऐसा करके उनको उड़ाना सिखा देता है। उकाब के पक्षियों का उड़ना सीखना बिल्कुल अलग तरीके से। और मेरे प्रिय दाऊद यहां जब परमेश्वर के वचन को देख रहा है तो किस जीवन को देख रहा है, तो कह रहा हूं किस प्रकार से उकाब दूरदृष्टि वाला पक्षी है, उकाब गति में तेज चलने वाला पक्षी है, उकाब शक्ति में है, उसके उकाब सामर्थ्य में। अगर आपको टाइम मिले आप उन रेफरेंस को बाइबल में देखिए, यशाया में है, यर्मिया में है, कई जगह पे है, आपको देखने को मिलेगा कि उकाब की विशेषता क्या है। और परमेश्वर दाऊद किस प्रकार से कहता है कि तेरी वो जिससे तेरी जवानी उकाब के समान फिर से नहीं हो जाती है। परमेश्वर जीवन को देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर फुर्ती को देने वाला परमेश्वर है, पाप निराश उताश करके परेशान करके बैठा देता है, नाश कर देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर शक्ति देता है, परमेश्वर सामर्थ देता है, परमेश्वर हमारे अंदर गति उत्पन्न कर देता है। हम मसीह के लिए फिर दौड़ते हैं, प्रभु के लिए हम गीत गाते हैं, आनंद से गीत गाते हैं। अभी पिछले दिनों में हमारी कार्य संगी हो रही थी, लोग बड़े जोश में गा रहे थे, नाच रहे थे, और तब मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप गा रहे नाच रहे हैं, लेकिन गाना नाचना काफी नहीं है, पर मसीह के जीवन को निरंतर बनाए रख करके दौड़ना वो जरूरी है। मसीह जीवन मालूम कैसा जीवन है? मसीह जीवन आप लोगों ने सड़क पर चलते हुए ट्रकों को देखा होगा, ट्रक और ट्रक, और हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा है, शायद विदेश में इतना नहीं होगा। सड़क के किनारे पत्ते पड़े रहते हैं, पत्ते पड़े, ट्रक आता है तेज से निकलता है, पत्ते उड़ते हैं, बड़े जोर से उड़ते हैं, और उड़ते हैं, ट्रक चला आता धीरे धीरे फिर बैठ जाते हैं, फिर दूसरी गाड़ी आती है फिर उड़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। कई बार मसीह जीवन हमें इसी बस व्यतीत करते हैं, कोई संदेश सुन लिया, किसी ने कुछ और कर दिया, थोड़ी देर हम उड़े, थोड़ी देर हम चले, थोड़ी देर सब कुछ हुए, लेकिन फिर हम गति से धीमे रह गए। उकाब ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमें शक्तिशाली बना देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य बना देता है, परमेश्वर हमें जोश से भर देता है, परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है, और ये परमेश्वर हमें साथ करता है, ये उसकी आशीषें हैं, ये उसकी आशीष। मेरे प्रियो 2015 साल आपके साथ कैसा रहा, क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर, कितना अधिक आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शायद आप निराश थे, परेशान थे। एक प्रभु के सेवक के बारे में मैं जानता हूं, आप नाम उनका जानते हैं, और मैं उनकी एक बार टेस्टिमनी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जब प्लेन में मुझे यात्रा करनी पड़ती थी तो मैं डरता था बहुत, मैं प्लेन में यात्रा नहीं, और मुझे करना तो पड़ता था और मैं बैठा रहता था। जब तक आखिरी कॉल नहीं आती थी तब तक मैं बैठा रहता था। जब आखिरी कॉल आने लगती थी तब मैं अपने आप को ऐसे पकड़ता और धकेलता और तब मैं प्लेन में जहाज में जाता था। तो वो कहने लगे, और मैं जितनी देर बैठा रहता था मैं बहुत डरता था। पर एक दिन जहाज में जाते जाते हुए मुसी में रहे, वो बाथरूम में गए और बाथरूम में उन्होंने शीशे को देखा और शीशे में उनका चेहरा था और तब उनको बहुत डर सा चेहरा दिखाई दे रहा था। और तब उन्होंने पता नहीं उनके जीवन परमेश्वर ने कुछ किया और एकदम से कहा, हे भय का आत्मा तू मेरे जीवन से दूर हो जा। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ्य और प्रेम का आत्मा दिया है, पहले पत्रस के अनुसार। और उन्होंने वहीं बाथरूम रह के प्रार्थना करी और निकल कर आए, एक ऐसा गतिमय जीवन बन गया उनका बहुत अधिक। मेरे प्रिय, ये सच है, मसीह जीवन उकाब किनाई का जीवन है, फुर्तीला जीवन है, परमेश्वर के सामर्थ्य में रहने वाला जीवन है। और वो दाऊद कहता है इन सारी प्रश्न बाद क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? पहली बात हमने देखी हमें जन्म कहना है, दूसरी बात हमने देखी कि उसने हमारे लिए कुछ किया है, छह आश्चर्य को देखा, तब उसके बाद छह पद से लेकर 18 पद में जल्दी से, लेकिन यहां पर 8 पद में यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। दो चीजें हम देखते हैं साथ में, परमेश्वर के ग्रेस को देखते हैं, परमेश्वर के जजमेंट को देखते हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम जरूर रहता है लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। और ये पद बाइबल में बार 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 हम इन पदों को देखते हैं। मेरे साथ निकालिए एक और निर्गमन, उसका 34 अध्याय 6-7 पद, निर्गमन 34 अध्याय 6-7 पद, फिर भी दोषी को किसी प्रकार दंड दिए ना छोड़ेगा, वो अपराध अधर्म पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और केवल हम परमेश्वर को अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी दयालु दयालु करके ना देखें, हमें इस बात को भी जानना है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। नहुम 1:3 में भी है, वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में है परंतु वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है। और अगर वो ऐसा परमेश्वर है तो हमें उसके चरित्र को जानना है, हमें उसके गुण को जानना है। और इसलिए तब यहां पर दाऊद कहता है क्योंकि वो ऐसा करता है। तब एक और बात को हम देखना चाहते हैं, जो कहना चाहता है, जैसे मैंने कहा कि वो पवित्र परमेश्वर है, वो धार्मिकता परमेश्वर है, वो न्याय परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है? 15 पद में कहता है मनुष्य घास के समान है, मनुष्य की आयु घास के समान है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है। और दाऊद अपने भजन संहिता में बार बार इस बात को अपना रहा है, पहचान रहा है, देख रहा है कि मनुष्य क्या है, मैं क्या हूं। उसने इस बात को उस समय से जान लिया था जिस समय वो राजा बना था। उस समय कहता है मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है, यदि तू मेरी सुधि ना लेता तो मैं आज तक क्या ना पहुंचता। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको जानना है कि मनुष्य केवल एक घास के समान है। वो बार बार भजन संहिता में 37:2 में, भजन संहिता 90:5 में, भजन संहिता 102:4 में, भजन संहिता 102:11 में और भजन संहिता यशायाह में वो बार बार कहता है मनुष्य। यशायाह भी कहता है कि मनुष्य घास के समान है। जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, मेरा जीवन क्या है, मैं किस योग्य हूं, मेरे अंदर कौन सी ऐसी बड़ी चीज है, मैं अपने आप को बिल्कुल शून्य निम्न छोटा पाता हूं। और मैं जब फिर परमेश्वर को देखता हूं, उसके अनुग्रह को, उसकी करुणा को, उसकी दया को, तब मैं उसके सामने गिर जाता हूं, मैं उसको साष्टांग प्रणाम करता हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं, मैं कहता हूं प्रभु तू ही केवल धन है, तू ही आराधना के योग्य है। और मेरे प्रियो, हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। जितना अधिक हम अपने स्वयं को अंदर रीति देखें, और परमेश्वर की महानता को देखें उतना अधिक हम परमेश्वर के सामने झुकेंगे। और ये बहुत जरूरी है। और दाऊद का जीवन में ही था, और इसीलिए वो कहता है क्यों ना केवल इस बात को देखता मैं क्या हूं, लेकिन एक और चीज को देखता है वो परमेश्वर के बारे में। वो कहता है 19 पद में, यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है और उसका प्रभुत्व सब पर शासन करता है। वो शासन करने वाला परमेश्वर है, वो राज करने वाला परमेश्वर है, वो सब सामर्थी परमेश्वर है, वो सब अधिकारी परमेश्वर है, सब कुछ उसके अधिकार में है। उसका सिंहासन कह रहा है स्वर्ग में स्थापित है। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो आज भी सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, मेरे और आपके पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, लोगों के सामने दिखाई दिया, और लोगों को देखते हुए देखते वो शिष्य के सामने वो सर पर उठा लिया गया। और अंतिम शब्द उसने ये थे कि जैसे मैं जा रहा हूं फिर से मैं एक दिन आऊंगा। और शिष्य ने भी गवाही दी कि उसको जैसे तुम जाते देख रहे हो, स्वर्गदूतों ने गवाही दी जैसे तुम जाते देख रहे हो वो फिर से वैसे वापस आएगा। आज वो सर पर सियासत पर विराजमान है, सर्व अधिकारी परमेश्वर है, सर्व अधिकारी परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो स्वर्ग पर विराजमान है। वो जरूर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, चरणी में उसने जन्म लिया, छोटे स्थान में लोगों ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन परमेश्वर की सनातन योजना में होकर उसने अपने आप को शून्य किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने आप को शून्य किया, दीन किया, वो आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली। क्यों? और तब वो आगे कहता है, पौलुस कहता है फिलिपियों में कि और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि एक दिन हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर के इस प्रभुत्व को पहचानता था, दाऊद परमेश्वर के इस प्रभुत्व के अधिकार को जानता था, और दाऊद उन आशीष को पहचानता था कि संसार में उसके लिए सर्वश्रेष्ठ आशीष क्या है। 2015 में आप किन आशीषों को परमेश्वर के सामने गिनना चाहेंगे? किन आशीषों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे? किन आशीषों के लिए आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से, आभार से, धन्यवाद से भर जाएगा? जरूर उसने प्रार्थना कर्तन में चंगाई दी होंगी, बीमारी से बचाएगा, घटनाओं दुर्घटनाओं से बचाएगा, बहुत कुछ करेंगे, आपकी आस्थाओं को पूरा किया होगा, लेकिन क्या उससे बढ़कर परमेश्वर ने आपको अपने वचन से तृप्त किया? परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बनाए रखा? परमेश्वर ने आपको पापों की क्षमा का अनुभव दिया? जब आप निर्बल हुए, असफल हुए या पाप में गिरे, अधर्म में गिरे, परमेश्वर ने आपको पुनः अपने पास ले लिया, आपको वो हृदय दिया कि आप अपना संबंध उससे बना सके और आप आनंद से उकाब के समान उड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सके। मेरे मन तो यह बहुत धनक है, और उसके किसी भी उपकार को ना बोलना, किसी भी उपकार को ना बोलना। मेरे प्रियो, काश इस वर्ष के अंत में हम उसके उपकारों को स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद दे सकें और अपने आप को तैयार कर सकें, अपने जीवन को नए समर्पण में डाल सकें। जैसे पौलुस कहता है रोमियों को लिखते हैं, इसलिए भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और तुम्हारे बुद्धि के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा को जो भली और भावती है अनुभव से मालूम करते चले जाओ। रोमियों का 12 अध्याय देखो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आने वाले दिनों के लिए एक नए समर्पण के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। थोड़ी देर हम शांत होंगे, आप अपने लिए विचार कीजिए, अपने मनों को तैयार कीजिए। आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आज आप क्या कहना चाहेंगे प्रभु से? क्या परमेश्वर ने आपकी सहायता की है? क्या आप उकाब के नाई उड़ रहे हैं? परमेश्वर ने आपकी सहायता की है कि आपके सर पर उसने मुकुट रखा है? आप परमेश्वर ने आपकी सहायता की है कि उसने आपके रोगों को चंगा किया है, भली वस्तु तृप्त किया है, और सबसे बढ़कर कि आपके पास ये अनुभव है कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पापों को क्षमा करते हुए, आपके अधर्मों को क्षमा करते हुए आपको अपने साथ बनाए रखा है। प्रभु जी इस वचन की रक्षा कीजिए और हमारी आस्था के अनुसार प्रभु हमें अपने लिए तैयार कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं।